धर्माराव की परीक्षा समाप्त हुई और वह गांव लौट आया। उसके आने के चौथे दिन गणाचारी फिर से बाहर निकल पड़ी। उसका निकलना इस बात का सूचक था कि गांव में कोई विशेष घटना होने वाली है। साधारणतः वह घर से बाहर निकलती ही न थी। प्रातःकाल स्नान आदि करके सफ़ेद साड़ी पहनती और भोजन के समय तक जप करती। भोजन के उपरांत चरखा कातती और घर का कुछ कामकाज करती। शाम को मंदिर जाती और वहाँ सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी के सम्मुख खड़ी होकर आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो जाती। रात को देर से घर लौटती और बिना भोजन किए ही सो जाती। यह थी उसकी दिनचर्या। वह सदा स्वप्न देखा करती। उन स्वप्नों में उसे आगामी घटनाओं की सूचना मिल जाती थी। जब कोई ऐसी सूचना मिलती तब दूसरे दिन सवेरे वह घर से बाहर निकलती। यदि वह आगामी घटना सारे गांव से संबंधित होती तो गणाचारी नीम की टहनी लेकर बाल बिखेर गांव में निकलती। यदि वह घटना किसी एक व्यक्ति से संबंध रखती तो पीपल की टहनी लिए और बालों को चोटी में बांध कर निकलती। घटना शुभ सूचक होती तो लाल साड़ी पहनती, अशुभ सूचक होती तो सफ़ेद साड़ी। उस दिन उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। पीपल की टहनी हाथ में लेकर माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए वह निकल पड़ी। उसका पीछा करने 10-15 वर्ष के बालक भी निकल पड़े। गणाचारी कोठी के सम्मुख जा खड़ी हुई। जब वह किसी घर के सामने खड़ी हो जाती तो लोग जाकर उससे पूछते, क्या बात है मैया? इस बात पर वह बताती कि अमुक घटना होने वाली है। फिर हाथ की टहनी वहीं छोड़कर घर लौटती और स्नान करके फिर से जप में लग जाती। यह था उसका क्रम। परंतु आज जब वह कोठी के सामने जा खड़ी हुई तो उससे किसी ने नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। कोई उससे सीधे मुँह बात करने को तक को तैयार न था। भीतर से एक बार रामेश्वरम बाहर आया और गणाचारी को देखकर बोला, यह पगली राण यहाँ क्यों अधम की? और कोठी के भीतर वापस चला गया। परिचारिकाओं ने भी गणाचारी से कुछ नहीं कहा सुना। जब से रानी साहिबा अस्वस्थ हुई तब से तीनों बड़े कर्ताधर्ताओं ने कोठी में स्थायी रूप से अड्डा जमा लिया था। रंगा राव जी मद्रास में ही रहने लगे थे। दीवान जी मद्रास और सुबन्ना पेट के बीच चक्कर काट रहे थे। खर्च अथापूर्व बढ़ता जा रहा था। रानी साहिबा कुछ बोल नहीं सकती थीं। 10 महीने पहले धर्माराव ने जब उन्हें देखा था वही दशा उनकी आज भी थी। उनकी दीर्घकालीन अस्वस्थता से सब लोग ऊब से गए थे। नौकर चाकर उनकी सेवा कर रहे थे, बाकी लोगों का उनके पास आना जाना बंद हो चुका था। यदा कदा ही कोई आता। रानी साहिबा किसी को पहचान नहीं पाती थीं, यूं ही शून्य दृष्टि से देखती रहती। नौकर ही उन्हें उठाते बिठाते और कपड़े बदलकर फिर से लिटाते थे। रंगा राव जी की पत्नी का नाम था सरोजनी देवी। वह गोदावरी जिले के एक जमींदार की लड़की थी। वे जमींदार बंगाली रीति रिवाजों के अनुयायी थे, सनातन धर्म का अनादर करते थे। सरोजनी देवी के ससुराल जाने के बाद उसके मायके में कई और विचित्र परिवर्तन हुए। हाँ, उसकी माताजी अकेली नए रीति रिवाजों को न अपनाकर सनातन पद्धति पर डटी रहीं। एक हद तक सरोजनी भी अपनी माता के जीवन क्रम का अनुसरण करती आई थी। ससुराल पहुँचने पर पति महोदय के नए नए ढंग उसे पसंद न आए। कुछ दिन तक तो उसे चुप रहना पड़ा। बात यह है कि जमींदारों के घरों में पति पत्नी में कोई निकट का संबंध या साहचर्य नहीं हुआ करता। अंतःपुर में प्रवेश करना हो तो दासी के द्वारा पहले सूचना देनी होती है। पति और पत्नी को एक दूसरे का औपचारिक ढंग से सम्मान करना होता है। उनकी बातचीत में तुम का प्रयोग निषिद्ध होता है। छोटी छोटी बातों पर दोनों में तनातनी शुरू हो जाती है। ऐसी दशा में साधारण गृहस्थों की तरह एक की बात दूसरा सुने यह संभव नहीं। दोनों के अपने अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। रंगा राव जी का मद्रास में रहना सरोजनी को पसंद न था, फिर भी कई दिन तक वह पति के साथ ज्यों त्यों करके रही। परंतु सास की अस्वस्थता शुरू होते ही वह सुबन्ना पेठ आई और वहीं रह गई। उसका लड़का हरप्पा उसी के पास था। रंगा राव जी और दीवान जी मद्रास में रह गए। बालक हरप्पा की आयु उस समय 10 वर्ष की थी। उसके बाद और कोई संतान नहीं थी। सरोजनी प्राचीन रीतियों में श्रद्धा रखती थी। बड़ी रानी साहिबा के समय से कोठी के कारोबार जिस प्रकार चलते थे सरोजनी ने भी उन्हें उसी प्रकार चलने दिया। वह प्रातःकाल स्नान आदि कर भगवान कृष्ण की पूजा करती। काफ़ी आदि पीना उसने छोड़ दिया था। 11 बजे तक कुछ नहीं खाती थी। एकादशी को उपवास करती और संध्या समय वेणुगोपाल स्वामी के दर्शन को जाती। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को सवेरे ब्राह्मणों को सदाव्रत की सामग्री देकर उनका भोजन होने के उपरांत स्वयं भोजन करती। उसका यह क्रम कुछ कुछ रंगाराव जी को भी ज्ञात था, परंतु उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। होते होते पति और पत्नी के रास्ते एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे। पति का हिंदू धर्म में विश्वास दिनों दिन घटता जा रहा था और वर्णाश्रम के प्रति अश्रद्धा बढ़ती जा रही थी। एकादशी, उपवास आदि उन्हें व्यर्थ प्रतीत होने लगे। उस दिन गणाचारी कोठी के सामने आ खड़ी हुई, परंतु सरोजनी को इसकी सूचना नहीं मिली। 10 बजे किसी ने जाकर उससे कहा, तब उसने गणाचारी को भीतर आने का निमंत्रण भेजा। एक दासी बाहर आकर गणाचारी से बोली, माँ जी ने अंदर बुलाया है। यह सुनकर गणाचारी सिर से पांव तक कांप उठी और जोर जोर से रोने लगी। उसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया। गणाचारी के मन में हर पल आवेश बढ़ने लगा। वह उछल कूद मचाती, हाय हाय रानी मर जाएंगी, रानी मर जाएंगी, चिल्लाती हुई पीपल की टहनी को तोड़कर एक टुकड़ा वहाँ फेंक दूसरा लेकर भाग खड़ी हुई और सीधे वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर में जा पहुँची। 3 शताब्दियों से सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी के मंदिर की गणाचारी वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर में कभी नहीं गई थी। आज उसका वहाँ जाना देखकर लोग भौचक्के रह गए। उन्हें बड़ा भय लगा। कुछ लोगों ने कहा, देखो लोग कहते हैं कि गणाचारी वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर में कभी नहीं जाती। दुष्टों ने कुछ ऐसा ही झूठ मूठ गढ़कर एक अद्भुत कहानी बना डाली है। गणाचारी ने पीपल की उस आधी टहनी को मंदिर के मुख्य द्वार पर वेणुगोपाल स्वामी के सम्मुख रख दिया और वहां से चली गई। सुवन्नापेट गत 5 वर्ष में बहुत बड़ा गांव बन गया था। 5 वर्ष पहले वह एक छोटा सा गांव था, अब वह काफ़ी फैल चुका था। मोटर गाड़ियां चलने लगी थीं और कई प्रकार के लोग आ बसे थे। पाठशाला के साथ साथ मास्टर और उनके परिवार आ पहुँचे। पादरी लोग कई जगहों पर नए नए भवन बनाकर हरिजनों आदि को अपने ईसाई धर्म में मिलाते हुए वहाँ अपना अड्डा जमाने लगे थे। गांव शहर में बदल गया। जो लोग नए नए आ बसे थे उन्हें गणाचारी की कथा ज्ञात न थी। आज लोगों में तरह तरह की बातें चल पड़ीं, तब कहीं उन्हें थोड़ा थोड़ा पता चला। उधर गणाचारी की भविष्यवाणी कोठी के भीतर पहुंची। रानी साहिबा की मृत्यु की संभावना सुनकर भी वहां किसी को दुख नहीं हुआ। राधा कृष्णैया ने सोचा, बुढ़िया 1 साल से जीवन और मृत्यु के बीच लटक सी रही है, अब उसका जाना ही अच्छा है। जमींदारों के परिवारों में साधारण परिवारों की भांति जीवन मरण पर गंभीर प्रतिक्रिया नहीं हुआ करती, फिर भी दिखाने के लिए राधा कृष्णैया ने बड़ी चिंता प्रकट की। रामेश्वरम ने भी कहा, निगोड़ी पगली कहीं की, उसने कुछ बकवास की और आप लोगों ने मान लिया। वाह वाह, 1 वर्ष से जो रानी बीमार हैं वे मर जाएंगी, यह भी कोई बड़ी भारी भविष्यवाणी हुई। कहने वाली तो ठहरी पगली, पर क्या बाकी सब लोग ही पागल हो गए हैं। गणाचारी घर जा रही थी, रास्ते में उसे हरिया दिखाई दिया। हरिया कभी गणाचारी के रास्ते में नहीं आता था, उसे देखते ही वह कतरा कर दूसरी ओर भाग जाता। आज तक वे दोनों कभी कभी आमने सामने नहीं हुए। आज गणाचारी को सामने देखकर हरिया बुरी तरह कांप गया। गणाचारी उसे देखा, पर साथ ही अपनी दृष्टि पलटकर आगे निकल गई। हरिया ने एक ठंडी सांस ली। उन दोनों की यह मुठभेड़ धर्माराव दूर से देख रहा था। जब वह हरिया के पास पहुंचा, गणाचारी दूर जा चुकी थी। हरिया ने धर्माराव की ओर देखा और भैया कहकर उससे लिपट गया। धर्माराव ने कहा, बाबा डरो नहीं, गणाचारी दूर चली गई है, मुझे भी धीरज आ गया है। गणाचारी का सारा वृत्तांत धर्माराव ने गांव में सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि रंगाराव कितना ही दुष्ट क्यों न हो, उस पर यह विपत्ति नहीं आनी चाहिए। हरिया धर्माराव से लिपटा था, उसे छोड़ता न था। धर्माराव ने उसका हाथ छुड़ाने की चेष्टा की। उसके पतले पतले हाथ अब कुछ मोटे हो चले थे। वे दोनों कोठी और मंदिरों के बीचों बीच बाजार में खड़े थे। गाँव का उत्तरी भाग खाली खाली दिख पड़ता था। धर्माराव ने उस ओर देखा, धान के खेत मानो गांव के भीतर घुसे आ रहे थे। गत वर्ष उसी स्थान पर ज्वार के खेत थे। धर्माराव ने हरिया से कहा, जाओ खेत में खेलो। यह सुनकर हरिया शून्य दृष्टि से धर्माराव की ओर ताकने लगा। पहले वह ज्वार के खेत में यथेच्छ घूमा करता, परंतु अब गांव के चारों ओर फैले धान के खेतों में वह बेचारा चल फिर नहीं सकता था। हाँ, गाँव के पूरब की ओर अभी पूरी तरह धान के खेत नहीं फैले थे। सिंचाई का पानी वहां की जमीन पर नहीं चढ़ पाता था, इसलिए जमींदार एक और नहर ऊंचे स्तर पर उधर खोद लाने का प्रयत्न कर रहे थे। धर्माराव ने हरिया को पूरब की ओर जाकर खेलने का संकेत किया और स्वयं अपने घर चला गया। दूसरे दिन रंगाराव जी मद्रास से आए। वह शुक्ल अष्टमी का दिन था। रात में चारों ओर चांदनी छिटकी हुई थी। लगभग आधे पहर रात तक ठंडी हवा नहीं हुई। धान की फसल कटने के उपरांत खेतों की जमीन में गर्मी के कारण दरारें पड़ गई थीं और उनसे गर्म भाप बाहर आ रही थी। इसी से गर्मी अधिक प्रतीत हो रही थी। रंगा राव जी अपने बंगले पर बैठकर सरोजनी के विषय में कुछ सोच रहे थे। लग रहा था कि वह उनसे दूर दूर जा रही है। क्यों उन्हें अपनी पत्नी के प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं रहा? उनकी इच्छा थी कि सरोजनी आधुनिक सभ्यता के अनुसार चलने लगे, परंतु वह थी प्राचीनता पर आस्था रखने वाली। एक बार मद्रास में जब रंगा राव जी ने गवर्नर बहादुर को चाय का निमंत्रण दिया था, तब उन्होंने सरोजनी को भी अपने साथ रहने को कहा, पर वह नहीं रही। गवर्नर बहादुर ने उनसे पूछा, फिर उन मेम साहिबा ने भी पूछा, आपके देश में बस ऐसा ही होता है? स्त्रियों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती? कहते तो हैं कि आधुनिक हैं, पर अपनी पत्नी को पर्दे से बाहर नहीं लाना चाहते। यह था मेम साहिबा का उलाहना। रंगा राव जी खिसिया गए और घर आकर सरोजनी को यह वृत्तांत सुनाया। सरोजनी ने कहा, खुद तो बिगड़े, साथ साथ सभी को बिगाड़ना चाहते हैं। यह सुनकर रंगा राव जी को बड़ा क्रोध आया। उन दोनों के बीच पहले से वर्तमान खाई को इस बातचीत ने और चौड़ा कर दिया। तब से दोनों में पहले जैसी बातचीत बड़ी हद तक बंद हो गई। रंगा राव जी सुबन्नापेठ आए, परंतु सरोजनी ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना क्रम जारी रखा। उस रात को रंगा राव जी ने एक नौकर द्वारा सरोजनी को खबर भेजी। सरोजनी ने उन्हें आने की अनुमति दे दी। रंगा राव जी भीतर गए। कमरे में दिया जल रहा था। सरोजनी के माथे पर बड़ा सा तिलक था। लाल रेशमी साड़ी पहनकर सोफे पर बैठी थी। रंगा राव जी के भीतर आते ही वह उठ खड़ी हुई। इससे पहले वह इस तरह कभी नहीं उठी थी। अतः रंगा राव जी ने पूछा, यह क्या? सरोजनी ने पूछा, क्या? रंगा राव जी बोले, मेरे आने पर आप खड़ी क्यों होती हैं? सरोजनी बोली, पत्नी के लिए पति भगवान के समान होता है। वेणुगोपाल स्वामी में और अपने स्वामी में मैं कोई अंतर नहीं पाती। रंगा राव जी उपहासपूर्वक हंस पड़े। पास ही मेज पर उनकी तस्वीर हाथी दांत की फ्रेम में जड़ी रखी थी। उसे फूलों की माला पहनाई गई थी और फूलों से तस्वीर की पूजा की गई थी। रंगा राव जी ने वह तस्वीर देखी। पत्नी से पूछा, यह सब आपने ही किया है? सरोजनी बोली, ऐसा न कहिए, मुझे अब से तुम कहकर पुकारना, यह आप वाला संबोधन ठीक नहीं। सरोजनी का यह उत्तर सुनकर रंगा राव जी को ऐसा लगा जैसे उनकी सारी जमींदारी शान मिट्टी में मिल गई हो। उन्होंने कुछ सोचा और तुरंत बाहर चले गए। उनके जाते समय सरोजनी ने उनका उपरना पकड़कर खींचा। यह भी उन्हें कुछ नया सा लगा। वे अपना उपरना छुड़ाकर चले गए और दूसरे ही दिन मद्रास जा पहुँचे। दशमी को सरोजनी स्नान करके फूल हाथ में लेकर पति की तस्वीर को पूजने लगी, पर तस्वीर अपने स्थान पर नहीं थी। नौकरों चाकरों को बुलाकर पूछा गया, पर किसी को कुछ पता नहीं था। आखिर एक दासी को डांट डपट कर पूछने पर वह बोली, राजा साहब ने ला देने को कहा था, सो मैं तस्वीर उन्हें दे आई, वे उसे मद्रास ले गए हैं। यह सुनकर सरोजनी की दशा बड़ी दयनीय हो उठी। दुख की एक लहर मानो नाभि से निकलकर दोनों ओर ऊपर को चढ़ती हृदय में प्रविष्ट हुई हो और कंठस्वर को गदगद बनाती हुई आत्मनिग्रह के कारण चंचल होकर मुख पर रक्त छटा बिखैरती हुई आँखों में लाली के रूप में प्रकट हुई हो। उसी के साथ साथ क्रोध भी बढ़ाया। सरोजनी ने नौकरों को बाहर भेज दिया और आंखें मूंद कर कमरे में अकेली बैठी रही। जिस दासी ने तस्वीर का वृत्तांत सुनाया था वह घबरा रही थी कि अब उस पर बिजलियां गिरेंगी, परंतु रानी का यह आत्मसंयम देखकर वह भौचक रह गई। रानी ने उस दिन भोजन नहीं किया। भोजन उसके कमरे में लाया गया। दासियां राह देखने लगीं, पर वह नहीं आई। उससे कुछ कहने सुनने का किसी को साहस नहीं हुआ। प्रतिदिन दोपहर तक भोजन करने वाली रानी शाम होने पर भी उपवास करती रही। एक दासी पर रानी का विशेष अनुग्रह था। वह रानी के मायके से आई हुई थी। उस दासी ने भी जाकर बड़ा आग्रह किया। आखिर ज्यों त्यों रानी ने थोड़ा सा दूध पीना स्वीकार किया। दासी खीर ले आई। उसे देखकर रानी फिर क्रोधित हो उठी, परंतु दासी के आग्रह पर उसने थोड़ी सी खा ली। दूसरे दिन एकादशी थी, अतः उसने किसी के आग्रह की परवाह न करते हुए उपवास किया। दिन भर कड़ी धूप के मारे प्राण छटपटाते रहे। गर्म हवा चल रही थी। धूप की लपटों में आंखें चौंधिया रही थीं। ऐसा लगता था कि नागेश्वर स्वामी अपने ललाट पर स्थित नेत्र से अंगारे उगल रहे हैं। उस कड़ी धूप में कोई पंछी नीड़ से बाहर निकलता तो उसकी लाश ही लौट पाती। गाय बैल आदि प्यास से मरे जा रहे थे, पर किसानों की मजाल नहीं होती थी कि घर के बाहर आकर उन्हें पानी दें। चारों ओर कहीं हरा पत्ता नहीं दिख पड़ता था। हरियाली कभी की सूख गई थी। साधारणतया सुवर्णापेठ में एक गज जमीन खोदने पर ही पानी का सोता फूटता था, परंतु आज ग्रीष्म के आतप से कुओं तक का पानी सूख सूख कर बड़ी गहराई में जा पहुंचा था। मानो प्यासा आदिशेष अपने सहस्र मुखों से अंतरजल के सारे स्रोतों को चूस कर पी गया हो। दिनों दिन धूप में एक प्रकार की लाली आने लगी। मानो सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी के 2000 नेत्रों और 2000 जीवों से रक्त धाराएं बह निकली हों। दोपहर का समय बीत चुका था, इसलिए सूर्य के ढलने से धूप की लाली तो कुछ कम हुई, पर गर्मी की प्रचंडता बढ़ती ही गई। प्राणी तिलमिला उठे। फूंकनी से निकलती हवा में जैसी गूंज होती है, वैसी ही अजीब सी गूंज उत्पन्न करती हुई हवा दोनों कानों में से आर पार चल रही थी। मनुष्य हिल नहीं पाते थे, पंछी उड़ नहीं पाते थे। दिन ढलकर संध्या हो आई, उष्णता कुछ थम सी गई। रानी सरोजनी शीशों वाली गाड़ी में सवार होकर मंदिर की ओर चली। मंदिर से सब पुरुषों को बाहर भेज दिया गया। रानी वहां उतरकर तलैया में पांव धोने गई। वहां तीन स्त्रियां थीं, उनमें से एक को रानी पहचानती थी, पर ठीक ठीक नहीं जानती थी कि कौन है। हाँ, एकादशी को वह उसे मंदिर में देखती आई थी। रानी के जाते समय मंदिर के भीतरी भाग में पुरुषों को ही नहीं, स्त्रियों को भी नहीं रहने दिया जाता था। हाँ, देवदासी को कोई रोक टोक नहीं थी। जब तक रानी मंदिर में रहती, तब तक देवदासी मुखमंडप में बैठी रहती। ऐसा लगता था कि उसे अपनी देह का भान नहीं है और वह तन्मयता में कुछ सोच रही है। रानी उससे कभी बोली नहीं, वह जानती भी नहीं थी कि यह लड़की कौन है। आज तलैया के पास तीनों स्त्रियों को देखते ही रानी का राजस मानो उभर आया। तुरंत अपनी दासी से पूछने लगी, स्त्रियाँ कौन हैं, इन्हें बाहर क्यों नहीं भेजा गया। दासी सिटपिटाती हुई उन स्त्रियों से बाहर जाने को कहने लगी, परंतु इतने में न जाने रानी ने क्या सोचा, वह दासी को रोकती हुई उन स्त्रियों के पास जा पहुंची। उनमें से एक देवदासी थी और शेष दो अरुंधति एवं रथंतरी। वे आपस में कुछ बातें कर रही थी। रथंतरी, बहन अरुंधति, एक वर्ष बीत गया, तुम्हें गाँव छोड़कर गए। गिरिका तुम्हारे जाने से बड़े उदास हो गई है। अरुंधति, मेरे जाने से उदास क्यों भला, मंदिर में उसके स्वामी तो विराजमान हैं। स्वामी के बाद स्वामी की बहन सुभद्रा जैसी तुम भी हो। स्वामी उसके अप्रत्यक्ष पति हैं, तुम प्रत्यक्ष पति हो। मैं तो आखिर देवर जैसी ठहरी, मेरा रहना क्या और न रहना क्या। देवदासी, भाभी तुम सच कहती हो, मुझे यह रथंतरी और मंदिर के स्वामी एक से लगते हैं। तुम्हारे जाने के बाद बड़ी भाभी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, प्रभु ने तो पहले ही देखना छोड़ दिया था। मेरे भाई पास नहीं थे और स्वामी का स्नेह जाता रहा। उपासना से मेरा शरीर सूखता जा रहा है, परंतु स्वामी का नखाग्र भी मेरे हृदय को नहीं छू पाया। तीन दिन हुए, मेरे भैया भी मुझे डांट रहे हैं, वे भी मेरे प्रति निर्दय हो गए हैं, फिर भी मैं उनका कहा मानती हूँ। पता नहीं स्वामी मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगे। इतने में रानी उनके पास पहुंची। देवदासी की बात उसने सुनी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तीनों स्त्रियों ने उनकी ओर देखा। दासी की उपस्थिति से वह स्पष्ट हो रहा था कि उनके सम्मुख रानी खड़ी हैं। रानी ने निश्चल दृष्टि से देवदासी को देखा तो तुरंत लजाकर कछुए की तरह सिकुड़ गई। रानी ने उसकी ओर संकेत करके अन्य दोनों स्त्रियों से पूछा, यह कौन है। अरुंधति बोली, गोपी है। यह सुनते ही देवदासी सिर से पांव तक कांप उठी और सीढ़ियों पर से फिसल कर पानी में गिर पड़ी। अरुंधति ने उसे पकड़कर बाहर खींचा और भीगे हुए घाघरे की कोरों को निचोड़ा। यह सब देख कर रानी भौचक रह गई। फिर उसने अरुंधति का परिचय पूछा। रथंतरी ने जवाब दिया, यह धर्माराव की पत्नी है। धर्माराव का नाम रानी दो चार बार सुन चुकी थी, जानती थी कि वह व्यक्ति कुछ समय तक उसके ससुर और सास को पुराण सुनाया करता था, परंतु गोपी का परिचय उसकी समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, गोपी का क्या अर्थ है। देवदासी ने दीन मुद्रा करके रथंतरी से लिपटते हुए कहा, अर्थ क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। रानी के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, पर वह संदेह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। उसने फिर पूछा, गोपी का क्या अर्थ है जी। यह सुनकर देवदासी रथंतरी का मुंह बंद करती हुई बोली, क्या है क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर वह सहसा रो पड़ी। उसका यह दुख देखकर रानी भी क्षुब्ध हो उठी और तलैया में पांव धोकर मंदिर में जा पहुंची। उसके साथ साथ तीनों स्त्रियां भी भीतर पहुंच गईं। वहां जाना देवदासी को पसंद न था, पर वह गई। चारों भगवान के सम्मुख जा खड़ी हुईं। रानी वेणुगोपाल स्वामी की ओर अपलक दृष्टि से निहार रही थी। उसे अपनी गृहस्थी का स्मरण हो आया। उसे लगा कि रंगाराव जी के आधुनिक विचारों और परिवेश को देखते हुए उसका उनकी पत्नी होना संगत नहीं है। उसके मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अब अपने में मिला लो, मेरा जीवन व्यर्थ है। प्रभु ने आँखें खोलकर रानी की ओर देखा। रानी को लगा कि भगवान की एक आंख अत्यंत दीप्यमान है और दूसरी अंधियारा उगल रही है। देवदासी की दृष्टि भगवान के चरणों पर गड़ी थी। चरणों पर सोने के गहने पहनाए गए थे। नखों के स्थान पर इंद्रनील मणियां जड़ी थीं। नखों की कांति चारों ओर नीली किरणें प्रसारित कर रही थी, मानो भगवान की कृपा से तारकाओं ने आँखें खोली हो। अधखुली आँखों से देवदासी ने उस कांति को पलकों के भीतर खींच लिया और अपनी नस नस में प्रसारित कर लिया। पुजारी प्रसाद ले आया, पहले देवदासी को दिया। रानी ने यह नहीं देखा। कोई और समय होता तो इस अनादर पर वह अवश्य क्रुद्ध हो उठती, परंतु न जाने क्यों आज उसकी आंखों में दीनता ही झलक रही थी, मानो वह वध्य स्थान हो जाने वाली कोई भीड़ बकरी हो। पुजारी को प्रभु की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की पूरी पूरी परख थी। रानी सोचने लगी, प्रभु के निकट के लोगों की पहचान जितनी पुजारी को हो सकती है, मुझे कैसे होगी। रानी ने देवदासी की ओर देखा। देवदासी का कंठ शंख की भांति, कमर चक्र की भांति और नयन पद्म की भांति सुशोभित थे। रानी ने आंखें मूंद ली। प्रभु देवदासी के पास आ खड़े हुए, उसके सिर पर अपना हाथ रखा। देवदासी ने प्रभु के पाँव छुए। रानी ने आँखें खोली और कहा, अरे हाँ, यह गोपी है न। उसके उपरांत चारों मुखमंडप में पहुँची। प्रमादवश रानी का पांव किसी सूखी टहनी जैसी वस्तु पर पड़ा और उसमें कोई सूखा तिनका सा झुक गया। रानी उफ कहती हुई हटी और उस वस्तु की ओर देखने लगी। वह थी सूखी हुई पीपल की टहनी। रानी का वहां रुकना और उस टहनी को गौर से देखना पुजारी ने देख लिया। रानी के पास सूखी टहनी देखकर वह बुरी तरह कांप गया। उसके मन में कई विचार उभरे। फिर उसने मन ही मन अपने आप को कोसा। पीपल की टहनी को देखते ही अरुंधति हाय दुर्भाग्य कहती हुई वहीं बैठ गई। औरों की समझ में कुछ नहीं आया। रानी ने अरुंधति से कारण पूछा। अरुंधति उस टहनी को रानी के हाथ से लेकर गौर से देखने लगी। वह आधी टूटी थी। सब घर लौट गए। आज रानी की गाड़ी कोठी के पूर्वी द्वार की ओर चल पड़ी। द्वार बंद था। गाड़ीवान उसे खुलवाने के लिए दरवान को बुला रहा था। इतने में कई लड़के गाड़ी के पास जमा हो गए। रानी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर देखा। एक लड़का हाथ में एक टहनी लिए यूं ही गाड़ी पर मार रहा था। दरवाज़ा खुलते ही वह टहनी रानी के शरीर को जा लगी। रानी उस टहनी को लेकर देखने लगी। वह भी पीपल की सूखी टहनी थी, आधी टूटी हुई। मंदिर वाली आधी टहनी को रानी अपने साथ ले आई थी। उसने दोनों को जोड़कर देखा, दोनों एक ही टहनी के भाग थे। रात को रानी ने दासी से पूछा, क्यों री, उस दिन गणाचारी क्या कह रही थी। दासी बोली, माँ जी, वह कह रही थी कि बड़ी रानी मर जाएंगी। सरोजनी दो दिन से उपवास कर रही थी। उसकी आंखें भीतर को गड़ सी गई थीं। सारा शरीर तप रहा था। वह मुरझाए हुए पीपल के पत्ते की भांति दिख रही थी। उसे नींद नहीं आती थी। आधी रात को उसने स्नान किया। प्रौढ़ चमड़ी की पूंछ के समान उसके केश सूख नहीं पाते थे। अगरू के धुएं में उसने उन्हें सुखाया, कपड़े में लपेट कर इधर उधर मरोड़ा। बड़े आग्रह पर रानी ने थोड़ा सा दूध पिया। सवेरा होते न होते उसे सर्दी का बुखार चढ़ाया। दासी ने बहुत रोका पर उसने एक न मानी और फिर स्नान किया। ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सदाव्रत की सामग्री दे दी। दासी ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज, दो दिन से रानी माँ ने कुछ नहीं खाया। एक घंटे के भीतर आप भोजन करके खबर भेजें। इस आदेश के अनुसार ब्राह्मणों ने एक घंटे के भीतर भोजन करके खबर भेजी। तब रानी ने भी भोजन किया। उसके सिर में दर्द हो रहा था। दासी ने पूछा, माँ जी, वैद्य को बुलवाऊं। रानी ने पूछा, किससे कहकर बुलवाओगी। दासी सकपका कर कहने लगी, सरवारा। रानी ने बात काट कर कहा, छी, और उसका मुख क्रोध से तमतमाने लगा। इसके तीन दिन बाद रंगाराव जी आए। तीन दिन से रानी का ज्वर नहीं उतर पाया था। रात को रानी ने पति को खबर करके बुलाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रंगाराव जी सोचने लगे, वह मुझे भगवान मानती है, मेरी आराधना करना चाहती है। इस देश में यह एक पागलपन है। संसार में पति और पत्नी परस्पर उपभोग के लिए होते हैं। मनुष्य को भगवान मानना निरा पागलपन है। एक दूसरे की आराधना करने से क्या लाभ होता है, समझ में नहीं आता। ऐसे पुराने विचार मेरे मित्र नागेश्वर राव को बिल्कुल पसंद नहीं। वह बड़ा मेधावी है। सारे धर्मों का सार उसने जान लिया है। यदि पत्नी अपने पति को देवता मानकर पूजने लग जाए तो फिर शारीरिक सुख की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। मंदिर में पत्थर की मूर्ति और उसके पुजारी में जो संबंध है, ठीक वही संबंध पति और पत्नी में रह जाएगा। इस देश में सभी संस्थाएँ स्वतंत्र विचारों से एकदम खाली दिखती हैं। पति पत्नी के संबंध का यह हाल है तो अन्य बातों का कहना ही क्या। काफी देर हो गई थी पर रंगा राव जी भीतर नहीं गए। दूसरे दिन सवेरे एक दासी आकर खबर दे गई कि माँ जी बीमार हैं, आपको भीतर बुलाया है। सारा दिन बीत गया पर रंगाराव नहीं गए। तीसरे दिन सवेरे फिर वही दासी आकर कहने लगी कि मद्रास लौटने से पहले एक बार माँ जी ने आपको बुलाया है। उसी दिन शाम को रंगाराव मद्रास चले गए। कोठी में रामेश्वरम की पत्नी थी, वह जाकर रानी को देख आई। रानी प्रतिदिन सवेरे उठती, स्नान करती और बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान का ध्यान करती। दोपहर तक कुछ न खाती, भोजन उसे भाता न था, रात को थोड़ा सा दूध पी लेती। दिनों दिन उसका शरीर सूखता जा रहा था। दासी उसकी दशा देखकर चिंतित हो उठी। पूर्णिमा की रात थी, रक्त क्षीणता के रोगी की देह की भांति चांदनी कुछ विवर्ण सी लगती थी, साथ ही साथ उष्ण रोगी के शरीर की भांति उसमें ग्रीष्म की उष्णता का पुट भी था। कोठी में पहले की तरह भांति भांति के वृक्ष नहीं थे, कई जगह वृक्ष गिर चुके थे और कोठी के अंदर का भाग खाली खाली सा लगता था। स्वर्गस्थ जमींदार के समय वहाँ हरे हरे सुपारी के पेड़, पान की बेलें, द्राक्षा की वल्लरियाँ, आम, मौसम्बी, पनस अर्थात कटहल आदि फल वृक्ष बड़ी संख्या में थे। प्रतिदिन उनकी अच्छी सिंचाई होती थी और उनके कारण कोठी के भीतर धूप नहीं पहुंच पाती थी। दूसरे दिन रानी ने अपने लड़के हरप्पा को बुला भेजा। वह 10 वर्ष का बालक था। साहबी टोपी पहने उसे लाया गया। उसे देखते ही उसका वेश रानी को असह्य प्रतीत हुआ। रानी के ससुर के पिता हरप्पा का चित्र बड़े कमरे में लगा था। डोरियों से बंधा हुआ ढीला कुर्ता, काछे की धोती, बाहों में भुजबंद, गले में रत्नहार, कलाइयों में सिंह तलाट। पाद टिप्पणी में है, विद्वता, बहादुरी अथवा किसी कला में विशिष्ट प्रतिभा रखने के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला सोने का कंगन, जिसका ऊपरी तल सिंहमुख की आकृति का होता है, सिंह तलाट कहलाता है। सिर पर दाहिनी ओर किंचित झुकी हुई पगड़ी, ऊपर लगा हुआ तुर्रा, पांव में नूपुर, कमर में लटकती तलवार, एक छोटा सा खंजर, एक शब्द में कहना तो हो तो बड़े हरप्पा मूर्तिमान शौर्य दिख पड़ते थे। इधर रानी ने छोटे हरप्पा को देखा। उसके मन में विचार आया कि एक शताब्दी के उस छोर पर वे हरप्पा और इस छोर पर यह हरप्पा खड़े हैं, दोनों में कितना विपर्यास है। रानी ने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसकी साहबी टोपी उतार फेंकी। फिर उसने बेटे के लिए जरी की कोर वाला उपरना मांगा, परंतु कोठी में वह कहीं नहीं मिला। किसी ने कहा जवाहरात वाले कमरे में होगा। वहीं जमींदारों के राज्याभिषेक संबंधी सामग्री रखी जाती थी, मुकुट, रत्नहार, पुराने कुर्ते, पुराने उपरने, ये सब कभी कभी उत्सव के समय और राज्याभिषेक के अवसर पर पहने जाते थे। उस कमरे की चाबी सदर नौकर के पास रहती थी। उसका नाम था वेंकटाद्री। वेंकटाद्री को बुलाया गया पर उसने कहा महाराज की अनुमति के बिना उस कमरे को नहीं खोला जा सकता। रानी ने 50 रुपये देकर एक रेशमी उपरना बाजार से मंगवाया, नौकरों चाकरों को बाहर भेज दिया और पुत्र को अपने पास बिठाकर बड़े जतन से उसके सिर पर पगड़ी बांधी। उसने कभी कोई काम नहीं किया था, सो उसके हाथों में दर्द होने लगा। उसने लड़के से पूछा, बेटा पढ़ोगे नहीं? वह बोला, मुझे पढ़ाई नहीं चाहिए। रानी बोली, इस गाँव में धर्माराव नाम के एक सज्जन हैं, तुम उन्हें जानते हो? बेटा बोला, नहीं। फिर रानी कहने लगी, मेरे बच्चे वे बड़े भले आदमी हैं, वेणुगोपाल स्वामी हमारे देवता हैं, स्वामी और धर्माराव का निकट का नाता है, तुम्हारी पढ़ाई धर्माराव के पास होनी चाहिए, वे तुम्हें भक्त बनाएंगे, तुम्हारे दादा उनसे पढ़ा करते थे। छोटे हरप्पा का अपने दादा पर अव्याज प्रेम था। 5 वर्ष की आयु में वह दादा की गोद में खेला करता था। स्वर्गीय जमींदार अपने पोते को सिर पर बैठा लिया करते थे, पोता उनकी मूछों से खेलता और उन्हें इधर उधर खींचता। दादा और पोते के बीच एक अपूर्व अनुराग था। इसी से बचपन में ही छोटे हरप्पा के मन पर दादा की कई स्मृतियाँ सदा के लिए अंकित हो गईं। अब भी दादा पर उसे बड़ा अभिमान था, अतः वह बोला, क्या बात है, दादा धर्माराव के पास पढ़ते थे तो मैं भी उन्हीं के पास पढ़ूंगा। दूसरे दिन रंगाराव जी मद्रास से आए। रानी ने फिर निमंत्रण भेजा पर रंगाराव भीतर नहीं गए। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी 3 दिन रंगाराव सुवन्नापीठ में रहे। पंचमी के दिन शाम को फिर एक बार दासी ने उनके पास रानी का निमंत्रण पहुंचाया। पहर रात हो चुकी थी। रंगाराव सोच रहे थे कि जाऊं कि न जाऊं, सुनता हूं कि बीमार है, न जाने क्या बीमारी है, बीमारी के बढ़ने की तो कोई खबर नहीं, सो अब तक कम हो चुकी होगी। इसके बाद अपने रीति रिवाज, सामाजिक और दूसरे रीति रिवाज तथा समाज आदि का चिंतन उनके मन में प्रारंभ हुआ। रंगाराव को नींद नहीं आ सकी। अभी अभी चंद्रोदय हो रहा था। पूर्णिमा से पंचमी तक 10 कलाएं खोया हुआ चंद्रमा पंच प्राण छोड़े हुए जीवच्छव की भांति चावल के फीके रंग में अभी अभी उदित हो रहा था। रंगाराव न जाने क्या सोचकर तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। उन्हें देखते ही रानी उठ खड़ी हुई, परंतु खड़े होते ही अशक्तता के कारण कारण उसके पांव लड़खड़ाए। वह गिर ही रही थी कि दासी ने उसे संभाल लिया। रंगाराव ने पत्नी को गौर से देखा। उसका शरीर लगभग निष्प्राण हो चुका था। 10 दिन के भीतर ही हड्डियों का ढांचा बनकर मानो पलंग से चिपक सी गई थी। हाँ, उसके मुख का सौंदर्य अब भी यथापूर्व था। रंगाराव ने पहले कभी नहीं सोचा था कि सरोजनी इतनी सुंदर है। वे मुग्ध हो गए। पत्नी के पास बैठकर उसके शरीर को सहलाते हुए बात करने लगे। सरोजनी ने एक बार आँख मूंद कर ठंडी आह भरी। रंगाराव ने पूछा, दर्द है क्या? सरोजनी बोली, नहीं। रंगाराव ने भी लंबी सांस ली। दूसरे दिन रंगाराव मद्रास चले गए। सारा दिन सरोजनी बेसुध पड़ी रही। दास दासी घबरा गए। सोचने लगे कि जमींदार साहब आए तो सही, पर रानी के लिए दवा दारू का ही प्रबंध नहीं किया और चले गए। उन नौकरों को कुछ नहीं सूझता था। शाम को हरप्पा ने अपने नौकर को बुलाकर पूछा, धर्माराव कौन है रे? नौकर ने पूछा, क्यों पूछते हो मालिक? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। एक काली घटा फैलती हुई सांध्य राग पर आक्रमण कर रही थी। पता नहीं उस ग्रीष्म ऋतु में यह घटा कहाँ से आई। पूर्व दिशा रूपी स्त्री के कपोलों पर हवा मानो फटाफट तमाचे लगा रही थी। थोड़ी देर में वह घटा छिन्न भिन्न हो गई और फिर से सांध्य राग प्रकट हुआ। दूसरे दिन एकादशी थी। रानी ने भोजन नहीं किया। दासी ने बहुत आग्रह किया, पर उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। संध्या समय अपने लड़के को साथ लेकर रानी मंदिर की ओर चल पड़ी। वह अपने आप खड़ी नहीं हो सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी। अतएव 2-3 दासियां उसे मंदिर के भीतर ले गईं। मंदिर में गिरिका, अरुंधति और रथंतरी दिख पड़ीं। ज्वर से रानी की आंखों में चक्कर आ रहा था। उसने देवदासी की ओर देखा। उसे वे तीनों स्त्रियाँ ताल वृक्ष की भांति बहुत ऊँची दिख पड़ीं। उसने दासी की ओर देखा तक नहीं, अपने आप में कुछ सोचने लगी। उसे गिरिका लक्ष्मी सी दीख पड़ी और अरुंधति और रथंतरी लक्ष्मी की सेवा करने वाली वाणी और पार्वती सी। रानी ने हाथ जोड़कर गिरिका को नमस्कार किया। देखने वाले सब भौचक रह गए। उसे बेसुध दशा में रानी को गाड़ी में बैठाकर ज्यों त्यों कोठी के भीतर पहुंचाया गया। उसे सन्निपात हुआ था। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, पर वह कहीं गया हुआ था। 3 पहर रात बीत चुकी थी। कोठी में सब के सब जाग रहे थे। मद्रास तार भेजा गया। रानी बीच बीच में वह देखो गोपाल स्वामी, पीपल की टहनी, गणाचारी, हरप्पा, इस प्रकार कुछ कहती जा रही थी। एक बार दासी को देख कर पूछने लगी, वे मद्रास से लौट आए हैं? सोते हुए हरप्पा को जगाकर माँ के पास लाया गया। वह अधखुली नींद से आकर माँ की गोद में सो गया। माँ को इसका पता भी न था। आखिर दासी लड़के को फिर से उठाकर वहाँ से दूर ले गई। इतने में चंद्रोदय होने लगा। आधे मिटे हुए कुमकुम के तिलक की भांति लाल चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होकर कोठी के पश्चिम में खड़े ताल वृक्षों के सिरों पर मानो फीका रक्त छिड़क रहा था। उसी समय गणाचारी जाग उठी और अपने भाई को बुलाकर बोली, रानी चल बसी, चंद्रा रेड्डी और रामचंद्र राजू को कोठी में ले जाओ। लोग इकट्ठे होकर कोठी में जाने लगे। धर्माराव के घर के सामने से उन्हें गुजरना पड़ता था। धर्माराव चबूतरे पर बैठा था। गणाचारी का भाई धर्माराव से बातचीत करने लगा। सब मिलकर कोठी के भीतर पहुंचे। वहां राधा कृष्णैया, रामेश्वरम और सरवा रायडू ने उनसे बातचीत की। उन्होंने रानी का हाल पूछा। इतने में एक दासी आकर बोली, बाबूजी, हमारी रानी हमें छोड़ गई। राधा कृष्णैया ने आतुरता से पूछा, क्या कहा क्या कहा? दासी बोली, बाबूजी, बड़ी रानी और छोटी रानी दोनों हमें छोड़ गई हैं। यह सुनकर सबके सब अवाक रह गए। दासी कहने लगी, छोटी रानी एकदम उठ खड़ी हुई और कहने लगी, वेणुगोपाल स्वामी मेरे लिए आए हैं। यह कहते कहते वे धड़ाम से गिर पड़ी। फिर उनके शरीर में प्राण नहीं रहे। इतने में एक और दासी आकर कहने लगी, बड़ी रानी चल बसी हैं। कई महीनों से वे न तो आंखें खोलती थीं न कुछ बोलती थीं, पर अभी अभी मरने से 1 मिनट पहले आंखें खोलकर कहने लगी, मेरी तपस्या का फल मिल गया। यह कहती हुई वे उठ खड़ी हुई, लेकिन तुरंत ही गिर पड़ीं। फिर उनके प्राण जाते रहे। चंद्रमा आकाश में लगभग 2 हाथ ऊपर चढ़ाया था। टूटे हुए कांच के टुकड़े की तरह आधा होकर भी वह अपना प्रकाश नहीं छोड़ता था। महासागर की तरंगों से इधर उधर विचलित सा, तट पर पड़े सूखे मोती के संपुट की तरह प्राची समुद्र के तट रूपी आकाश पर आधा चंद्रमा उत्तान पड़ा हुआ एक अधूरी गांठ सा नजर आ रहा था। दूसरे दिन रंगाराव जी मद्रास से लौट आए। पत्नी की मृत्यु का कारण उन्हें कुछ ज्ञात न था। दाह संस्कार आदि होते ही वे फिर मद्रास चले गए। ब्राह्मणों ने कहा कि श्राद्ध कर्म 15 दिन चलना चाहिए, परंतु रंगाराव जी अपनी माँ और पत्नी के श्राद्ध कर्म के लिए सहमत नहीं हुए। वे बोले, इन बातों में क्या धरा है, यह तो ब्राह्मणों के ढकोसले हैं। मद्रास पहुंचकर वे काला कोट पहनकर फिरने लगे। सुवन्नापेट के कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उनसे कहा गया कि काला कोट शोक का प्रतीक है। सरोजनी की मृत्यु के बाद रंगाराव जी विचार करने लगे कि हरप्पा को मद्रास ले जाना ठीक होगा या नहीं। बचपन से लड़का अपने पिता से हिला मिला नहीं था, वह अपनी दासी और माँ के सामने ही खुला हुआ था, इसलिए दासी और दो नौकरों पर हरप्पा का भार छोड़कर रंगाराव मद्रास लौट गए। हुक्म हुआ कि हरप्पा को प्रतिदिन सायंकाल मोटर में बिठाकर सैर के लिए ले जाया जाए। माँ की मृत्यु के दूसरे दिन लड़के ने माँ के बारे में पूछा। दासी ने कहा कि माँ और पिताजी मद्रास गए हुए हैं, दस एक दिन में लौटेंगे। एक दिन संध्या समय नौकर रंगन्ना और दासी पुलम्मा दोनों हरप्पा को मोटर गाड़ी में बैठा कर सैर के लिए ले जा रहे थे। वे विजयवाड़ा गए। उस रास्ते में विजयवाड़ा से एक मील पहले एक पुल था। पुल के पास गाड़ी रोक कर लड़के को उतारा गया और इधर उधर खेलने कूदने के लिए छोड़ दिया गया। थोड़ी देर में धर्मराव उधर सैर करता हुआ आ पहुंचा। हरप्पा मोटर गाड़ी के पीछे एक वृक्ष की डाली को नीचे की ओर झुका रहा था। धर्मराव ने उसे देखकर तुरंत पहचान लिया। वह पास आकर छोटे जमींदार की ओर एकटक देखने लगा। उसका इस प्रकार घूरना हरप्पा के जमींदारी रक्त को खौल गया। उसने डांट कर पूछा, कौन हो तुम? धर्मराव चुपचाप आगे की ओर चल दिया। ये बातें सुनकर नौकर रंगन्ना ने पीछे की ओर मुड़कर देखा। हरप्पा ने उससे पूछा, वह आदमी कौन है? रंगन्ना बोला, वही धर्मराव है। यह सुनकर हरप्पा ने कहा, उन्हें यहाँ बुला ला। नौकर के बुलाने पर धर्मराव लौट आया। हरप्पा ने धर्मराव से पूछा, आपका नाम धर्मराव है? मेरी माँ ने मुझे आपसे आपके पास पढ़ने को कहा था। वह मद्रास गई हुई हैं, मैं आपके पास पढ़ूंगा। माँ आकर देखेंगी और बड़ी प्रसन्न होंगी। धर्मराव ने ताड़ लिया कि बेचारे हरप्पा को माँ की मृत्यु का पता नहीं लगने दिया गया है, परंतु वह उसे कैसे पढ़ाएगा। कोठी के सभी कर्ता धर्ताओं को उसके नाम से चिढ़ थी। वह सोचने लगा, रानी इस बालक के मन में यह बीज क्यों बो गई। बोला, जी हाँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। हरप्पा, तो कब से शुरू करेंगे? धर्मराव, कल से। यह बात धर्मराव ने केवल टालने के लिए कही, फिर उसने विदा ली। हरप्पा रात भर नौकर रंगन्ना से पूछता रहा, पढ़ाई के लिए क्या क्या चाहिए। तख्ती, पेंसिल, पुस्तक आदि खरीद कर लाए गए। हरप्पा बैठा ही रहा। नौकर ने उसे भोजन करने को कहा, पर वह बोला, धर्मराव जी आएंगे, पहले पढ़ूंगा तब भोजन करूंगा। नौकर ने बहुत समझाया पर उसने एक न मानी। परंत में विवश होकर नौकर ने कोठी के कर्ता धर्ताओं के पास खबर पहुंचाई। वे भी आकर आग्रह करने लगे, पर हरप्पा ने एक न सुनी। अंत में धर्मराव को बुला लाने का निश्चय हुआ। धर्मराव आया, आश्चर्यचकित होकर हरप्पा को पढ़ाने लगा। उसके जाते समय हरप्पा ने पूछा, फिर कब आएंगे? धर्मराव कुछ न बोला। हरप्पा ने कहा, कल आइएगा, आपने मेरे दादा को पढ़ाया था, मुझे भी पढ़ाना होगा। धर्मराव चला गया। बालक के आग्रह पर दूसरे दिन भी उसे कोठी जाना पड़ा। रामेश्वरम ने इस बात की रिपोर्ट मद्रास भेजी। रंगाराव जी का उत्तर आया, ठीक है, हम लड़के को प्रसन्न देखना चाहते हैं, जो उसके जी में आए उसे करने दिया जाए। रामेश्वरम यह जवाब पढ़कर खिसिया गया। इस प्रकार कोठी में धर्मराव का आना जाना फिर से शुरू हो गया। उसके आने पर प्रसन्न होने वाला कोई न था। हरप्पा छोटा था, उसे अपनी प्रसन्नता का स्पष्ट भान भी न था। प्रतिदिन सवेरे 8 बजे वह पुस्तक लेकर बैठ जाता। धर्मराव आता और 10 बजे तक पढ़ाता। बालक बड़े जतन से पढ़ रहा था। एक बार सुनी हुई बात उसे कभी नहीं भूलती थी। रात को अपनी पढ़ाई के लिए दिया मंगवाता। एक बार उसने नौकर से पूछा, मैं 10 बरस का हो गया हूँ, फिर भी पिताजी ने मेरी पढ़ाई का प्रबंध क्यों नहीं किया। एक दिन धर्मराव पढ़ाने आया तो हरप्पा ने उससे पूछा, महाशय, आपको प्रतिमास कितना वेतन चाहिए? धर्मराव बोला, कुछ भी नहीं। हरप्पा ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मेरी माँ मद्रास से लौट आएंगी तब वही आपको वेतन का निर्णय करेंगी। धर्मराव की आंखें डबडबा आईं। कहीं बालक न देख ले, इस भय से उसने अपने दुपट्टे से तुरंत आँखें पोंछते हुए कहा, मैं कल आऊँगा, और वहाँ से चला गया। मद्रास में एक दिन रंगाराव जी गवर्नर बहादुर को अपना निजी वृत्तांत सुना रहे थे। पत्नी की मृत्यु और पुत्र की दशा आदि सही बातें उन्हें सुनाई। गवर्नर बहादुर ने हार्दिक दुख और सहानुभूति प्रकट करके सुझाव दिया कि लड़के के लिए एक ट्यूटर नियुक्त किया जाए। रंगाराव जी ने कहा, धर्मराव नामक एक बीए तक पढ़ा हुआ आदमी है, वही अब पढ़ा रहा है। गवर्नर ने कहा, तेलुगु सिखाने तक उसके पास पढ़ाई हो सकती है, परंतु लड़के के तौर तरीकों में सुधार करना हो और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का सच्चा नागरिक बनने की शिक्षा देनी हो तो किसी अंग्रेज ट्यूटर को नियुक्त करना ठीक होगा। गवर्नर ने इट्सन नामक एक अंग्रेज को प्रतिमास 1200 रुपये वेतन पर नियुक्त करने की सिफारिश की। थोड़े ही दिनों में इट्सन सुवर्णापेट पहुंचा। गांव के बाहर मिशन वालों के बंगले में वह रहने लगा। हरप्पा को अपने ही पास बुलाकर उसने पढ़ाना शुरू किया। संध्या समय इट्सन लड़के को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता। एक दिन पढ़ाई के संदर्भ में धर्मराव ने कहा कि हरिश्चंद्र बड़े सत्पुरुष थे। हरप्पा ने पूछा, क्या यीशु क्राइस्ट से भी अच्छे थे? धर्मराव बोला, हरिश्चंद्र के समय यीशु क्राइस्ट थे ही नहीं, सो कैसे कहा जा सकता है कि दोनों में कौन किससे अधिक सत्पुरुष थे। दोनों के जीवन काल भिन्न थे, परंतु इस विवरण से हरप्पा का समाधान नहीं हुआ। दूसरे दिन इट्सन ने हरप्पा से यीशु क्राइस्ट की फिर चर्चा की। हरप्पा बोला, हमारे हरिश्चंद्र भी यीशु क्राइस्ट जैसे सत्पुरुष कहे जाते हैं। इट्सन ने समझाया, हरिश्चंद्र नहीं और कोई भी नहीं, यीशु क्राइस्ट के समान सत्पुरुष यीशु क्राइस्ट ही थे। दूसरे दिन धर्माराव पढ़ाने आया तो हरप्पा ने पूछा, कहते हैं कि यीशु क्राइस्ट के समान सत्पुरुष और कोई नहीं था, क्या यह सच है? धर्माराव ने उत्तर दिया, भैया मैं पढ़ाने आता हूँ तेलुगु, साहब पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी। तेलुगु में हरिश्चंद्र, राम, कृष्ण, इनको महान माना जाता है। अंग्रेज लोग यीशु क्राइस्ट को महान मानते हैं। तुम यहाँ की पढ़ाई वहाँ और वहाँ की पढ़ाई यहाँ मत दोहराना, दोनों प्रकार की पढ़ाई अपनी अपनी जगह किया करना। हरप्पा को यह बात पसंद आई। बैसाख का महीना आया, खबर आई कि रंगाराव जी विलायत गए हुए हैं। सुबन्नापेठ में लोग आपस में कहने लगे कि पत्नी के वियोग का दुख रंगाराव जी को असह्य हुआ होगा और उसे भुलाने के लिए विलायत गए होंगे। बैसाख पूर्णिमा की चांदनी छिटकी हुई थी। हजारों कोरों के साथ परिभ्रमण करने वाले तीक्ष्ण सूर्य रूपी सुदर्शन चक्र से निकलती हुई कांति चंद्रबिंब के बहाने चारों ओर फैल रही थी। चांदनी ऐसी लगती थी मानो भक्तों पर प्रसन्न होकर श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदहास कर रहे हों और उस मंदहास के दीप्ति वायु के स्तरों पर झूला झूल रही हो। ऐसे समय में दुबले पतले शरीर पर सफेद साड़ी पहने, कानों तक फैले नेत्रांचलों में काजल लगाए, मांग में सिंदूर भरे, कहीं कहीं फूली हुई बेल की भांति कतिपय आभरणों से चमकती तनुलतिका को लेकर सुंदरता में काली चोली और सफेद साड़ी के बीच मानो होड़ सी लगाती हुई देवदासी मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी भेंट रामेश्वरम से हुई। जहां दोनों मिले वहां और कोई न था। रामेश्वरम धीरे से बोला, छोरी कहाँ चली? देवदासी को ऐसा लगा मानो उसके हृदय में किसी ने शूल मार दिया हो। उसकी आयु 17 वर्ष की हो चली थी, पर आज तक सुवन्नापेठ में ऐसी बात उससे किसी ने नहीं कही थी। देवदासी ने विस्फारित नेत्रों से रामेश्वरम की ओर देखा मानो दो सुदर्शन चक्र फिरने लगे हों, परंतु रामेश्वरम को केवल दो विकसित कमल दिख पड़े। झंझा में डुलती हुई काली नागिन की भांति देवदासी जल्दी जल्दी चलने लगी। रामेश्वरम को ऐसा लगा कि मदन की सफ़ेद पताका हवा में फहरा रही है। उन दोनों की भेंट और देवदासी का आगे निकल जाना धर्माराव ने दूर से देख लिया था। उसे लगा मानो सारा रक्त उसके हृदय में एकत्र होकर जम गया है। देवदासी जिस वेग से रामेश्वरम से दूर जा रही थी उसी वेग से धर्माराव देवदासी की ओर गया। पास आकर उसने पूछा, क्या हुआ? गिरिका बोली, भैया कुत्ते को क्या मालूम कि नैवेद्य की वस्तु को छूना नहीं चाहिए। धर्माराव चुपचाप सिर लटकाए घर चल दिया और स्नान करके जप में व्यस्त हो गया। देवदासी मंदिर जा पहुंची, परंतु उसे लग रहा था मानो सारे शरीर पर बिच्छू रेंग रहे हों। अपने उस शरीर को लेकर भगवान के आगे जाने की उसे इच्छा नहीं हो रही थी। वह घर लौट आई। बड़े जतन से आईने के सम्मुख खड़ी होकर, जतन से पहनी हुई साड़ी, जतन से लगाए हुए तिलक और काजल आदि को एक एक करके उतारने लगी। जिस प्रकार यज्ञ के समय कुत्ते के छुए हुए पुरोडाश को तज देते हैं, वो जिस प्रकार अपनी पत्नी के प्रति अन्य पुरुष के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न होने पर पति उसे तज देता है, उसी प्रकार देवदासी ने अपने आभूषणों को तज दिया। फिर वो स्नान करके लाल चोली और काली साड़ी पहनकर माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर पुनः स्वामी के सानिध्य में जा पहुंची। धर्माराव आंगन के पास आया। अरुंधति और गिरिका मंदिर में गईं। अरुंधति ने पूछा, क्यों जी इतनी देर से क्यों निकली हो? गिरिका की आंखों में आंसू भर आए। चांदनी उन डबडबाई आंखों पर फूट पड़ी और आंखें चमक उठी। अरुंधति को लगा वे गिरिका की आंखें नहीं आंसू से लबालब दो कासार हैं। उसने सोचा, शायद आज गिरिका को स्वामी ने दर्शन नहीं दिए, इसी से वह उदास हो गई है। वह कहने लगी, देवी क्यों रोती हो? क्या तुम नहीं जानती कि प्रभु तुम्हें जितना प्रेम करते हैं प्रभु को तुमसे उतना ही प्रेम है। तुम सोचती होगी प्रभु ने तुम्हें गले नहीं लगाया, पर तुम ही कहो कभी तुमने स्वयं प्रभु को गले लगाया है? इसका जवाब दो। गिरिका मन ही मन सोचने लगी, बात तो ठीक है, मैंने स्वामी को कभी गले नहीं लगाया, पर ऐसा करने जाती भी तो पुजारी चुप रहता। वैसे मंदिर के स्वामी का और मेरा क्या नाता हो सकता है? वे मेरे घर पधारे तब न मेरे होंगे। आज मैं स्वामी के और समीप जाऊंगी। अरे स्वामी के समीप जाने के विचार मात्र से मेरा शरीर पुलकित हो रहा है। मैं कब उनके समीप जा सकूंगी? इतने दिन हुए पर उनके समीप जा न पाई, तब उन्हें गले लगाना कब संभव होगा? मैं स्वयं उनके रूप में कब बदल जाऊंगी? क्या करूं? दोनों मंदिर में पहुंची। देवदासी प्रभु के सम्मुख खड़ी न हो सकी। बड़े जतन से वह बन ठन कर आई थी, पर क्या पता कि उसका श्रृंगार प्राणनाथ को रिझा पाएगा या नहीं। अरुंधति पूछ रही थी, क्या स्वामी की तरह काली
काली दिखने के लिए यह काली साड़ी पहनी है। गिरिका मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। वह सोच रही थी, कभी कभी दुष्टों की अपकृति भी भगवान के विषय में उपकृति बन जाती है। उस रामेश्वरम ने बुरा करने की ठानी थी, पर उसकी करनी से अंत में भला ही हुआ। प्रभु भी संभवतः यही सोचते होंगे। देवदासी को स्वामी की दृष्टि में प्रेम की अरुणिमा दीख पड़ी, क्रोध की नहीं। वैसे उस परम सात्विक प्रभु को इन बातों से क्या सरोकार। इस भगवान के शरीर में तो रक्त नहीं, सो रामेश्वरम जैसों की अपकृतियों का यह प्रतिकार करेगा। क्या स्वामी को रामेश्वरम की निर्लज्जता ज्ञात नहीं? क्या वे इतना नहीं जान सकते थे? क्या उन्हें देवदासी पर सचमुच प्रेम और अभिमान है? वह सोचने लगी, यह तो मेरा पागलपन है जो प्रभु पर अपने प्राण वारे जाती हूँ। आखिर मेरी गिनती ही क्या है? बहुत हो तो यही कि 16,000 में मैं भी एक हूँ। देवदासी की आंखें डबडबा आईं। आषाढ़ के पहले दिन पूर्व में एक छोटी सी घटा दीख पड़ी और क्रमशः अपने तीन चरणों को तीन लोकों पर प्रसारने वाले वामन की भांति पूर्व, ईशान और आग्नेय भागों पर गाढ़े काजल का लेप कर गई। बादल ऐसे गरजे मानो भगवान पांचजन्य का नाद कर रहे हों। बिजली चमक पड़ी। देवदासी बगुले की भांति मंदिर में गई। रामेश्वर का दुर्व्यवहार उसके मन में गढ़ था गया था। उसे लगा कि स्वामी उसका उपहास कर रहे हैं। वह लज्जा के अवगुंठन में छिप सी गई। इस अनुभूति से अत्यंत आनंदित होकर तन्मयता में घर लौटती देवदासी को मेघराज ने सिर से पांव तक जल में भिगो दिया। रंगाराव जी विलायत से लौटे तो एक अंग्रेजी युवती को अपने साथ ले आए। उससे ब्याह करना चाहते थे। वह युवती अपने संप्रदाय को छोड़कर हिंदू बन गई। दोनों आकर कोठी में रहने लगे। नौकर चाकरों को कुछ नहीं सूझता था। वे अब किसका श्रृंगार करेंगे भला? शरीर मल मल कर किसको स्नान कराएंगे? किसके पांव धोएंगे? उन नौकरों के सेवा तत्पर शरीर का प्रयोजन ही क्या रहा? और यदि उन्हें बेकार समझकर कोठी से हटा दिया गया तो पीढ़ियों से चली आती उनकी आजीविका का क्या होगा? यह नई रानी अपने सब काम स्वयं कर लेती थी, खुद चाय बनाती थी, मिठाइयों की उसे आवश्यकता नहीं थी। नौकर चाकर कुछ काम करने जाते तो हैरान होकर उन्हें घूरती, कुछ विचित्र ढंग से हंसती थी। उन ग्रामीणों को देखकर नई रानी की हंसी मानवीय नहीं लगती थी। पश्चिमी देशों में भी ऊंचे घरानों में भी अत्यंत सुंदर स्त्रियाँ होती हैं, पर जो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं उन्हें प्रायः वैसी सुंदर स्त्रियाँ नहीं मिलती। इस नई रानी का उस देश के समाज में कौन सा स्थान था यह किसी को ज्ञात न था। 4 दिन कोठी में रहकर पति पत्नी मद्रास लौट गए। रानी का नाम सुसानी था। उसने उस नाम को बदलकर शशिनी रख दिया। विवाह के बाद दोनों एक बार और सुवर्णापेट आए। उन्हें देखकर कोठी में सबके सब दंग रह गए। सारा गांव हैरान हो गया। मंदिर में स्वामी का शरीर एकदम काला पड़ गया। वे सोचने लगे, मेरे पुजारी गोरे हैं, मैं काला हूँ। वे लौकिक हैं, मैं वैदिक हूँ। वे नागरिक हैं, मैं ग्रामीण हूँ। वे श्वेत द्वीपवासी हैं, मैं भी श्वेत द्वीपवासी हूँ। परंतु मुझ जैसे काले कलूटे को श्वेत द्वीपवासी कौन मानेगा? स्वामी को कुछ नहीं सूझा। एक रानी को तो उन्होंने आश्रय दिया था, परंतु इस नई रानी के आगे उनकी क्या चलती। एक दिन बालक हरप्पा ने शशिनी को देखा। देखते ही वह भौचक खड़ा हो गया। नौकर रंगन्ना ने कहा, यही तुम्हारी माता जी हैं। यह सुनकर हरप्पा ने सहसा नौकर के मुंह पर छड़ी दे मारी। नौकर की आंखों पर चोट पड़ी और वे मुंद गई। हरप्पा गरज कर बोला, क्या तेरी आंखें नहीं हैं? शशिनी आई तो सही, परंतु क्या वह रंगाराव की पत्नी थी? कोठी की रानी थी? हरप्पा की माता थी? क्या वह स्वामी के नाम पर एकादशी का उपवास करती थी?